मुश्किल में हूँ सरकार, मैं मुश्किल में हूँ।
अपने अंदर खौफ खुदा पैदा करने का बेहतरीन नुस्खा यही है कि चाहे कितनी ही इबादत करता है बंदा, रियाजत करता है, अपने आप को डराए रखे। ये मालूम नहीं कि मेरा खात्मा कैसा हो, क्योंकि इन्नमल आमाल बिल खवातीम, आमाल का कोई एतबार नहीं मगर खात्मे। तो किसी को ये यकीनी तौर पर मालूम नहीं होता कि मेरा खात्मा ईमान पर होगा या नहीं। तो इसलिए हर शख्स डरता रहे, चाहे कितना ही परहेजगार क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला से डरता रहे और इल्तिजा करता रहे, इल्हाहो जारी करता रहे कि या अल्लाह मेरा ईमान सलामत है। लेकिन अब तो ऐसी बदकिस्मती है, किस्मत फूटी है कहना चाहिए, कि अब तो पोजीशन ये है कि बस दौलत की सलामती सब मांगते हैं, माल का तहफ्फुज इसके लिए लॉकर्स में जमा रखते हैं, बड़े बड़े ताले लगाते हैं, चौकीदार रखते हैं। ये सब मना नहीं है माल की हिफाजत, लेकिन एक बात करता हूँ कि माल की हिफाजत के लिए हर एक कोशा है, घर की हिफाजत के लिए हर एक कोशा है, मगर ईमान की हिफाजत की किसी को नहीं पड़ी। पंचायत सुध भी नहीं है कि ईमान की भी हिफाजत करनी चाहिए, कुछ नहीं। सैयदना सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, वो उस दौर में ऐसा होता होगा इसलिए फरमाते हैं, उस वक्त लोग ईमान की सलामती तलब करते होंगे, लेकिन खुश्की का दौर आ गया होगा। तो फरमाते हैं, दीन सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। यानी दीन की सलामती सब मांगते हैं, मगर इश्क की सलामती तो कोई कोई मांगता है, तो दीन के साथ साथ इश्क की सलामती भी मांगनी चाहिए। सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर वालों को ये मशवरा दे रहे हैं, मगर वो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का दौर तो बहुत अच्छा था कि चलो दीन की सलामती लोग मांगते भी तो थे, अब तो थोड़ी सी तरमीम माजरत के साथ मैंने ये कर दी है उस मिसराए में, कि अब पोजीशन ये है, माल सलामत हर कोई मंगे, दीन सलामत कोई हो। अब तो सारे माल सलामत मांग रहे, दीन सलामत तो कोई कोई मांग। इतने आते हैं जिनको रोजी में बरकत चाहिए, दुकान होती है लेकिन आजकल नहीं चल रही, तो माल की सलामती वाले बहुत आएंगे, कल आते ही बच्चों की सलामती वाले आएंगे, माँ बाप की सलामती वाले आएंगे, अपनी सलामती वाले आएंगे। लेकिन अब शायद मेरा बयान सुनकर कल कोई कहे कैसा तावीज या वजीफा दे दो कि मेरा ईमान सलामत रहे, वरना ऐसे लोग इल्ला माशा, तो वजीफा या तावीज ऐसा मांगने वाले कहाँ आते जो ये कहें कि भाई हमको ऐसा तावीज दे दो कि हमारा ईमान सलामत रहे। मैं एक बात कर रहा हूँ, चलो ये तो है ना कि आदमी दुआ की बात कर दे, हर एक को कहना चाहिए, यानी मुझे कहें हर, यानी कि उस जबान से दुआ मांगनी चाहिए जिस जबान से हमने गुनाह नहीं किया रिवायतों में, तो दूसरा मुसलमान जो है उसको दुआ का कहना चाहिए कि हमने उसकी जबान से गुनाह नहीं किया। तो इसके लिए भी कहाँ कहते हैं, तो रोजी में बरकत हुई की तो बात करते हैं। मैंने सेठों को देखा, पार्टियों को, पार्टे जो होते हैं ना, ये रोजी में बरकत, भाई कैसे कयामत भी हिसाब देगा, डाकू उठा जाएगा, वो निकलवा लेगा, लेकिन कनाहत नहीं। बस वो हल में मजीद का नारा है, जितनी दौलत ज्यादा इतनी मुसीबत ज्यादा, हिसाब दुनिया का भी ज्यादा और आखिरत का भी ज्यादा, लेकिन तसव्वुर ही नहीं, ज़हन ही नहीं कि नेकियों में बरकत के भी मतलब कोई सूरत निकाली जाए, ईमान की हिफाजत का भी ज़हन बनाया जाए, मकान की तकलीफ की हर एक को मतलब देने के सोच है, किराए का मकान है, ओनरशिप हो जाए, मकान छोटा पड़ता है बड़ा हो जाए, इलाका अच्छा मिल जाए वगैरह, कब्र कुशादा हो जाए, इसका कोई वीर भी अमल नहीं मांग, कब्र कुशादा हो, अंधेरा ना हो, जन्नत की खिड़की उसमें खुले, मदीने के जलवे उसमें लपक आए, नई नई जन्नतुल बकी ही में कब्र मिल जाए, इसके तावीज और वजाइफ का कोई मांगता है। दुनिया से दिल लगाया है, दुनिया को अपनाया है, हालांकि इस बेगैरत और बेवफा दुनिया को कौन नहीं जानता। बड़ी मजे की बात याद आई, एक बुजुर्ग की बारगाह में एक साहब हाजिर होते, अर्ज करते हैं, आलीजा इबादत तो करता हूँ मगर इबादत में दिल नहीं लगता। ये हम में से हर एक को शिकायत है, सबके दिल की बात अर्ज कर रहा हूँ, इबादत में दिल नहीं लगता, लज्जत नहीं आती, खुशी व खुजू नहीं आता। जैसे नमाज पढ़ते भी हम तो बेदिली से पढ़ते, भाग भागते बस निकल जाते, जल्दी जल्दी मतलब नमाजें पढ़कर ये या हो या जमात भी पूरी नहीं, आधी आधी जमात लेते, एक रकात मिल गई, दो रकात मिल गई, सुन्नतें नहीं पढ़ते, असर और ईशा की सुन्नतें नहीं पढ़ते, इसलिए क्या इबादत में दिल नहीं लगता। तो वो कोई हमारे भाई होंगे बेचारे, तो एक अल्लाह वाले की बारगाह में हाजिर हुए कि हुजूर इबादत में दिल नहीं लगता, लज्जत नहीं आती। तो उन्होंने कहा तू शैतान का दामाद मालूम होता है। अरे हुजूर क्या मतलब? तो फरमाया कि लगता है कि तूने शैतान की बेटी से शादी करना ली, शैतान की बेटी है दुनिया, तो तूने दुनिया से शादी कर ली है, दुनिया से तूने मोहब्बत और इश्क लड़ा लिया है और उसको तूने दिल में बसा लिया है, तो जाहिर है कि बाप अपनी बेटी से मिलने के लिए तो आता ही है। तो इसलिए शैतान अपनी बेटी से मिलने के लिए तेरे दिल में आता रहता है। तो जब शैतान दिल में आता रहता है तो तेरे दिल में फसाद बरपा नहीं होगा, तो क्या तेरा दिल इबादत में लगेगा कैसे? अल्लाह वालों की बातें बड़ी प्यारी होती है। खैर ये बातें मुहावरों पर मुश्तमिल है, लेकिन बहरहाल ये बात बड़ी मजे की है, तो समझ में आने वाली। ये सैकड़ों साल पुरानी किताब का वाक्य मैंने अर्ज किया आपकी खिदमत में। तो ये मतलब दुनिया से जो मोहब्बत करने वाला वो गोया शैतान का दामाद है उस बुजुर्ग के नजदीक। तो शैतान के दामाद साहब का दिल नमाज में लग जाए, रोजों में लग जाए, ज़कात में लग जाए, इबादत में लग जाए, अल्लाह अल्लाह करने में लग जाए, ये बड़ा मुश्किल है। वरना जो रियाकारी के लिए रोएगा या रियाकारी के लिए इबादत करता है उसके लिए जहन्नम में एक वादी मखसूस है अजाब के लिए। ये आपके जहन में है। जो अपनी इबादतों को बिना वजह डिक्लेयर करते रहते हैं, मैंने इतने उम्रे किए, मैंने इतने हज किए, मैं इतने साल से दलाइल खैरात पढ़ता हूँ, मैं इतने अरसे से तहज्जुद पढ़ता हूँ, मेरे रोज से इतने दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ। लोग बोलते हैं ना कि इतने बिना वजह बोलते रहे, मैं इतने नफली रोजे रखता हूँ, मैंने फुला मस्जिद में हिस्सा तामीर किया है, ये बत्तियां लगवा दी हैं, पंखे लगवा दिए हैं, वुज़ू खाना बनवा दिया है, पुनः मदरसे को अपना इतना डोनेशन जाता है, पुनः अपनी बेटी की मैंने शादी करवा दी है, पुनः पुनः अंजुमन को अपना इतना चंदा जाता है। उन्हें जो बेचारे हैं जिनको मालूमात नहीं होती, माहौल से वाबस्ता नहीं होते, वो इस तरह की बातें ही है कि जनरल मतलब मुआशरे में है ये कहते हैं। जो अपना अमल है वो लोगों पर बिना वजह जाहिर करते ही रहते, जो अपने नाम के आगे हाजी लगाते तो खामा का अपना हाजी डिक्लेयर करते हैं बिना जरूरत। हाँ जरूरत हो तो डिक्लेयर करे आदमी, बिना जरूरत डिक्लेयर करते हैं, अपना नाम लेते हैं हाजी करके। इसकी फजीलत क्या है कि अपने हाजी का आपने ऐलान किया तो माँ बदौलत नमाजी, मैं भी कहूंगा नमाजी इलियास कादरी, तो वो कहेंगे भाई मैं तो हर साल पाबंदी ज़कात देता हूँ, ज़कती मोहम्मद हनीफ कादरी, तो कोई सदकाती बन जाएगा, तो कोई साइम बन जाएगा, साइम मन रोजादा। तुम्हारा लिए कि मैं बहुत कुछ कह चुका, तो अपने नाम के आगे कारी हाफिज या खतीब फुला मस्जिद, मुझे इसमें भी खतरा लगता है कि लोग इस तरह तारुफ करवाने से इज्जत करते हैं। माशाल्लाह खतीब साहब, हजरत माशाल्लाह, इमाम साहब माशाल्लाह, फिर लोग उसके साथ रियायत बरतते हैं, दुनियावी तौर पर उसकी रियायत करते हैं, उसको सस्ता माल देते हैं, उससे बाद का पैसे नहीं लेते, अच्छा अच्छा मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब हैं आप, अरे पता ही नहीं चाहता हम तो कितने खाते दूर से नमाज पढ़ के चले जाते। इस तरह अपने आप को इमाम मौजिन या खतीब जताने का मकसद क्या? अगर दुनियावी मनफात हासिल करना है तो रियाकारी, वरना आप बताइए रियाकारी की डेफिनेशन मुझे समझा दीजिए। मैं तो खैर ख्वाह हूँ, अद्दीन नसीहा दीन खैर खाई का नाम है। हाँ जब जरूरत है तो अपने आप को कारी भी बताएंगे, हाफिज भी बताएंगे, तो रमजान शरीफ में तरावी पढ़ानी है तो अब जरूरत है ठीक है, तो आप अपने आप को डिक्लेयर करेंगे कि हाँ भाई मैंने हिफ्ज किया है, या आप मौजिनी या इमामत का इंटरव्यू है उस वक्त आप डिक्लेयर करेंगे। वो एक जरूरत के पेशे नजर इन नमला अमाल बिनियाद, अमाल का दारो मदार नियतों पर है, वरना बिला जरूरत जो आजकल आदत है नाम के साथ बोलते ही बोलते, अपने नाम के साथ लाजमी बोलते आजी हाफिज, बाद लोग कारी भी बोलते हैं बेचारे की हाजत क्या है। मैंने तो ऐसे लोग भी देखे माशाल्लाह कि जो अपना सैयद होना छुपाते हैं, यार इतने गुनाहगार हैं कि हमको शर्म आती कि हम कहें कि हम आका के बेटे हैं, हम वो बताते नहीं। जो शरफ आपको हासिल है आप जबान से नहीं भी बताएंगे तो वो शरफ आपका बरकरार रहेगा, बल्कि उसमें बरकत आई, और अगर आप उस शरफ को दुनिया में बताते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना होगा कियामत के रोज ये कह दिया जाए, हदीसों में मज़ामीन मौजूद है कि जो मतलब रियाकाराना अमल करेगा लोगों को बताएगा उसको कह दिया जाएगा कि तुम इसका अजर भी अब लोगों ही से मांग लो, जिन लोगों के लिए तुमने अमल किया है उन्हीं से ले लें। ये बड़ी नाजुक बातें हैं, बड़ी समझने की बातें, इसमें अपनी बेहतरी की बातें आप चुन लीजिए आपकी आखिरत की बेहतरी की। अगर लोगों को पता नहीं चलेगा आपके फजाइल, आपके मनासिब, आपकी इबादत, आपकी रियाजत, तो इससे आपका कोई नुकसान नहीं बल्कि आपका इंशाल्लाह इससे फायदा ही फायदा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं कि राह खुदा में 1,000 दीनार खर्च करने से मुझे खौफ खुदा से 1 कतरा आंसू बहा लेना ज्यादा पसंद है। जनाब आउन बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं मुझे ये रिवायत मिली है कि इंसान के खौफ खुदा से बहने वाले आंसू इंसान के जिस्म के जिस हिस्से पर लगते हैं उस हिस्से को अल्लाह ताला जहन्नम पर हराम कर देता है। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोते थे तो आपके सीने अनवर से इस तरह की आवाज निकलती थी ऐसा जोश मारता था रोने की आवाज जैसे हांडी उबलती और जोश मारती। जनाब बकर बिन अब्दुल्ला मुजनी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इरशाद है, जो लोग हंसते हुए गुनाह करते हैं वो रोते हुए दोजख में दाखिल होंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, कयामत के रोज हर आंख रोएगी मगर जो आंख अल्लाह अज़्ज़ा वजल की हराम करदा चीजों से रुक गई, जो आंख राय खुदा में बेदार रही और जिस आंख से खौफे इलाही की वजह से मक्की के सर के बराबर आंसू निकला वो रोने से महफूज रहे। कई भाइयों कोशिश करनी चाहिए कि हम संजीदा हों और खौफ खुदा से अपने आप को रुलाएं। इसके लिए जहन बनाएं, इसके लिए जरा खुशियों से किनारा कशी करनी पड़ेगी। यानी जो जो खुशियां बढ़ती जाती है आदमी का दिल जो है उसमें से रिक्कत खत्म होती चली जाती है। ये शायद सबकी समझ में ये बात नहीं आएगी, लेकिन जिसकी समझ में आएगी उससे मुराद दुनियावी खुशियां हैं। तो जो जितना खुशियों से ज्यादा हम किनार होगा उसको रोना नहीं आएगा। अब इसकी मिसाल यूं समझे ना कि जब आपको कोई खुशी की खबर मिलती है कितना मजा आता है, लुत्फ आता है, और अगर कोई तकलीफ पहुंचती है ठोकर ही लग जाती है तो अल्लाह निकल जाता है ना। जरा बीमारी आती है तो अल्लाह कैसा याद आता है, तकलीफ आती है तो अल्लाह याद आता है, बच्चा बीमार हो जाता है तो अल्लाह याद आता है, और जब खुशी होती है तो अल्लाह याद आता या नहीं आता, ये गालिबन सभी को तजर्बा होगा। इन खुशियों का रास्ता रोकने के लिए हर एक को अपने खात्मे पर सोचते रहना चाहिए।
हाय ना फरमानिया बेबा